ॐ अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं साकजातां सैगणरघुनाथवितं तं सजीवम् सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगणललिता श्रीविशाखान्विताक्ष नमाओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु भेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वंदे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। आराधयो भगवान् ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण यकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणं लं प्रेमापमर्तो महां श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मदमिदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवजन वैष्णवीज माताजी सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडो प्रणाम। तो आज श्रीमद् भागवतम नित्य भागवत सेवया का आज हम जो श्लोक संख्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, मेरे को 53 नंबर श्लोक सातवें स्कंद का सातवां अध्याय 53 नंबर श्लोक, इसके ऊपर हम समस्त गुरुजन वैष्णवजन हमारे श्रील प्रभुपाद वर्तमान आचार्य सबकी कृपा से और आप सभी वैष्णवजन की मैं याचना करता हूँ कि हम इस निर्मल महापुराण के ऊपर कुछ बोलने के लिए ठाकुर जी सारी परंपरा वैष्णव परंपरा मुझको शक्ति प्रदान करें और मैं इसमें कुछ बोलने के लिए सक्षम हो सकूं। तो आज का जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, लगभग ये अध्याय समापन की तरफ जा रहा है, 53वां श्लोक और इस अध्याय के कुल 55 श्लोक हैं। तो इसके बाद में दो श्लोकों का हम अध्ययन और करेंगे। तो आज का ये श्लोक बड़ा विशेष है। इस श्लोक में बहुत ही एक उपदेश दे रहे हैं अंत में आकर के जो महाजन हैं, 12 महाजनों में एक महाजन प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को जो भी अल्प आयु में ही हैं, 5 वर्ष के ही बालक हैं प्रहलाद महाराज, और अपने साथियों को बड़ा ही उत्तम बड़ा ही गूढ़ रहस्य इसमें उद्घाटित कर रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं, इसका पाठ कर लेते हैं। ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुता दानवा ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुता दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे तदा अतएव हरौ भगवान हरि के प्रति भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्तिम भक्ति कुरुतः करो दानवः मेरे मित्रों असुर पुत्रों आत्म औपम्येन अपनी ही तरह सर्वत्र सभी जगह सर्वभूतात्मानि जो समस्त जीवों में आत्मा तथा परमात्मा के रूप में स्थित हैं ईश्वरे नियंता परमेश्वर में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करो। तात्पर्य आत्मोपेन शब्द का अर्थ है अपने ही समान अन्यों को समझना। मनुष्य आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के बिना कृष्णा भावना भावित हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। अतः भक्तों का कर्तव्य है कि विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारे जीव सांसारिक यातनाएं झेल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। दरअसल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे पर उपकार कहा है। जिन लोगों ने भारत मूवी में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उन्हें पर उपकार करने का कार्यभार विशेष रूप से सौंपा गया है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित है, अतः चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म लेने वाले सारे मनुष्यों को उपदेश दिया है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाएं और फिर सारे विश्व में इस दिव्य संदेश का उपदेश दें, जिससे अन्य लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करके सुखी बन सकें। तो यहाँ शिला भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। तो इस श्लोक के ऊपर पुनः चलते हैं। ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुता दानवा आत्मोपेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनि ईश्वरे। तो श्लोक का जो प्रारंभ हो रहा है वो एक शब्द से हो रहा है, ततो। ततो ततो का मतलब है अतएव, इसलिए। अब इसलिए मतलब किस लिए प्रारंभ हो रहा है, इसलिए। तो किस लिए के लिए एक श्लोक पीछे चलते हैं, तब पता लग जाएगा किस लिए, फिर इसका हमको जवाब समझ में आएगा। तो किस लिए के लिए हम चलते हैं पिछले श्लोक पे, 51 और 52वें श्लोक पे। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, जो आपने कल इसका हमने अध्ययन और पाठ किया था। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर, ना ही सदाचरण या प्राकृत ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। इसीलिए अब ये श्लोक से कनेक्ट हो गया, अतएव यानी ततो ततो, इसीलिए क्या करना है, ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुत दावना, इसीलिए आप क्या करो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। क्योंकि भगवान को किसी और कार्य से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, न दान से, न ब्राह्मण बनने से, न अनेक प्रकार की तपस्याएं करने से, न व्रत करने से, किसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, केवल भगवान हरि के प्रति, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी भक्ति करो। पहली लाइन में यही जो है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ततो हरो भगवती, हरो मतलब भगवान हरि के प्रति, भगवती का मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करो। पहली लाइन में इतना ही उपदेश, आप क्या करो, भगवान की भक्ति करो। क्यों करो, क्योंकि उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता किसी अन्य कार्य से, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, आत्म उपन्येन, भक्ति करनी है लेकिन एक उसमें एक शर्त रख दी है, एक कंडीशन रख दी है। कैसे भक्ति करनी है, सभी जीवों को, जितने भी जीव हैं सबको अपने समान समझकर, अपने से समान, कम से कम अपने से समान समझना है। वैसे तो महाप्रभु कहते हैं त्रिणादपि सुनि चेना तरोरपि से सुना, अपने को तो क्या मानना है, तृण के समान मानना है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि सब जीवों को जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, ऐसे ही हमें सब जीवों से प्रेम करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। सबसे द्वेष करते हुए भक्ति नहीं करनी, वो भक्ति फलीभूत होने वाली नहीं। नंबर एक बात, भक्ति करनी है लेकिन सबसे प्रेम करते हुए। तो यहां शिला प्रूपा सबसे पहले तात्पर्य में लिख रहे हैं, आत्मपम्यन शब्द का अर्थ है अपने ही समान अन्यों को समझना। अब आगे चलते हैं, आत्मपम्यन फिर क्या करना है, सर्वत्र सर्वभूतात्मनि ईश्वरे। तो भगवान की भक्ति करनी है, पहली लाइन में बता दिया। कैसे करनी है, सब जीवों को अपने जैसा समझ करके, जैसे हम अपने से प्रेम करते हैं, ऐसा सबसे प्रेम करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। कौन से भगवान की भक्ति करनी है, वो ऊपर बता दिया, हरि की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन कैसे भक्ति करें, कहां करें, कहां जाकर के करें, उसके लिए किसी गुफा में जाना होगा, कहीं पहाड़ पर जाना होगा, कहां जाएंगे, कहां जाके भक्ति करें। तो कह रहे हैं सर्वत्र, सब जगह विद्यमान है वो भगवान, सर्वत्र सब जगह है, कहीं भी बैठ करके आप कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां बैठे हो सर्वत्र हैं। और क्या है अगला शब्द क्या है, सर्वभूतात्मनि ईश्वरे, और सब जीवों में वो ईश्वर के रूप में है, सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में है, परम नियंता के रूप में सब जीवों के हृदय में विराजमान। तो ऐसे भगवान की भक्ति करो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं किसको, अपने सहपाठियों को। लेकिन प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में भक्ति के साथ साथ एक बहुत ही विशेष हमको जो है संदेश दे रहे हैं, केवल भक्ति नहीं करनी। प्रभुपाद कह रहे हैं केवल भक्ति नहीं करनी, भक्ति करके क्या करना है, प्रचार करना। सारा तात्पर्य है शिला प्रभुपाद ने प्रचार के ऊपर ही फोकस किया। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो ये प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है, ये शिला प्रभुपाद का अगर हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो पूरे प्रभुपाद ने तात्पर्य में यही लिखा है कि भक्तों का कर्तव्य है कि विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारे जीव संसारिक यातनाएं झेल रहे हैं, सारे जीव दुखी हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है, द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी इन दिस यूनिवर्स। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य क्या है? भावना कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, इससे उत्तम कोई कार्य नहीं है। और महाप्रभु ने बताया है कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो यहां पर फिर प्रभुपाद नीचे लिख रहे हैं कि सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित है, अतएव चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म लेने वाले सारे मनुष्यों को उपदेश दिया है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाएं और फिर सारे विश्व में इस संदेश को उपदेश दें, जिससे अन्य लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करके सुखी बन सके। अब दो बातें हैं, एक तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपको भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी है, अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं। और कैसे करनी है? सब जीवों को अपने समान समझ करके, और किस भगवान की करनी है जो सर्वत्र है। लेकिन प्रभुपाद करने भक्ति भी करनी है और भक्ति के साथ साथ प्रचार भी करना, केवल भक्ति नहीं करनी। तो जब तक हम भक्ति करके उसका प्रचार नहीं करेंगे, तब तक फिर हमारा वो कार्य अधूरा है, पूर्ण नहीं है। वैष्णवा पर दुखा दुखी, वैष्णव जन तो होते हैं वो दुखी होते हैं दूसरों के दुख को देख करके। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। तो इस पीड़ा को श्रील प्रभुपाद ने समझा, अनंत वैष्णव आज पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, हमारे षट गोस्वामी जिन्होंने क्या किया, षट गोस्वामी अष्टकम का जो पहला श्लोक उसका एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, और उसमें से भी हमको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम वो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मसरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो, मैं वंदना करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं किसको? श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वंदे रूप सनातनो, फिर रघु युगो, रघु युगो का मतलब दो रघु, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। वंदे रूप सनातनो रघु युगो, और फिर सी जीव गोपालको, सी जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, मैं इनकी वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों वंदना करते हैं? कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, क्योंकि जो सदैव कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन तथा नृत्य करने में आविष्ट रहते हैं। क्यों प्रणाम करता हूं? क्योंकि कृष्ण के कीर्तन करने में और नृत्य करने में सदैव आविष्ट रहते हैं, और वे भगवत प्रेम के महासागर ही हैं। प्रेमा अमृतम भो निधि, प्रेम अमृत के सागर हैं। और क्या है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, है ना, सबसे प्रेम करते हैं। जैसे हमने श्लोक में आत्मपम्येन, आत्मपम्येन का मतलब अपने के समान समझना। तो अब यहां पर जो षट गोस्वामियों का गुण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि धीर अधीर, धीर अधीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, कि वो जो धीर है, जो धैर्यवान है, और जो आतताई है, जो आतंकवादी है, आतंकी है, वो क्या है, धैर्यवान तथा आतताई दोनों प्रकार के लोगों में प्रिय है। दोनों ही प्रकार के लोग उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी से मत्सर नहीं करते, किसी से ईर्ष्या करते हैं। जो आतताई हैं, जो दुष्ट हैं, वो भी उनसे प्रेम करते हैं, और जो धीर हैं, जो धैर्यवान हैं, वो भी उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए कि वो किसी से मत्सर नहीं करते, सबको अपना जैसा समझते हैं। बहुत ऊंची बात है, बहुत इसको धीरे रोज हमको मनन करते ही रहना चाहिए। षट गोस्वामी अष्टकम। और फिर श्री चैतन्य कृपा भरो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो है उनको पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार से वे भुवि भुवो भारा वहंतारको, इस भौतिक जगत में सारे बद्ध जीवों का, भुवि भुवो सारे जीवों का क्या कर रहे हैं, भार अवहंतारको, उनके उनके दुखों को ले रहे हैं, उनके भार को अपने सर पे ले रहे हैं। भार अवंतारको, सारे जीवों के भार को अपने सर पे ले रहे हैं, भार अवंतारको, ऐसे ऐसे निर्मत्सर, ऐसे षट गोस्वामी। इसीलिए क्या करता हूं, वंदे रूप सनातनो रघु युगो सी जीव गोपाल को। तो इस प्रकार से यहां पर प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को प्रचार कर रहे हैं, जो स्वयं महाजन हैं। क्या कह रहे हैं, ततो हरो भगवती भक्तिम गुरु तदानवा आत्मपम्येन सर्वत्र सर्वभूत आत्मनीश्वरा। तो श्याम शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि मनुष्य आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के कृष्ण भावना भावित हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है के व्यक्ति ये तात्पर्य, ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि भगवान की भक्ति किए बगैर सुखी नहीं रह सकते। और इसी अध्याय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में 38वें श्लोक के तात्पर्य में भगवान कहते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में श्रेष्ठ हितैषी के रूप में सखा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क कर सकता, इजीली भगवान से संपर्क कोई भी कर सकता है। क्यों कि भगवान सर्वत्र है, सर्वस्य चाम हृदि संविष्टो, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, बहुत आसानी से संपर्क कर सकता है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं 9 प्रकार की विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्नम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, किसी भी प्रकार से कोई भी सब भक्ति को, सब सबको, और या एक भक्ति से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और भगवान सर्वत्र उपलब्ध है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना आसान है, लेकिन नरक जाना बहुत कठिन है, नरक जाना बहुत कठिन है, नरक जाने में बड़ा परिश्रम है भैया, नरक जाने के लिए बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपको, बड़ा धन का खर्च करना पड़ेगा। जो कुसंगी हैं, कुसंगियों के साथ समय बिताना पड़ेगा, वो आपका धन खर्च करवाएंगे, आपको नशा करवाएंगे, आपको कहीं कहीं ले जाएंगे, सब जगह धन खर्च होता है कुसंग करने में, कुसंग बगैर खर्च किए नहीं होता, अपना भी धन खर्च कर देंगे, आपका भी करवा देंगे, जुआ खिलवा देंगे, अवैध स्त्री संग करवा देंगे, नशा करवा देंगे, मांसाहार करा देंगे, सब चीज़ों में धन लगता है। लेकिन भगवान की भक्ति करना कितना सरल है, भगवान सर्वत्र हैं, कहीं भी बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इतना आसान कार्य है भगवान को प्राप्त करना, और नरक जाना बहुत कठिन काम है। फिर प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? फिर प्रचार क्यों करें जब इतना आसान है और बगैर खर्चे के कार्य हो रहा है और उसमें खर्चा भी लग रहा है और कष्ट भी है, तो फिर प्रचार करने की आवश्यकता क्या है? प्रचार तो जो मुश्किल कार्य उसके लिए किया जाता है, नरक जाने के लिए प्रचार करना चाहिए क्योंकि उसमें धन खर्च होता है, ये तो बगैर धन के फोकट में मिल रहा है भक्ति, तो इसके लिए प्रचार क्यों करने की आवश्यकता है? जैसे भूख लगने पर व्यक्ति स्वयं भोजन कर लेता है, कोई प्रचार करता है उसको? कोई प्रचार नहीं करता, भूख लग रही है मैं जाऊंगा खाऊंगा, कोई प्रचार नहीं करता कि भाई तुमको भूख लगी है तुमको खा लेना चाहिए, स्वयं खा लेते हैं भूख लगती है। इसी प्रकार से जीवन में हमको दुख होगा कष्ट होगा हम स्वयं भगवान को बुला लेंगे ना, क्या आवश्यकता है प्रचार करने की? क्यों हमारे सारे आचार्य, हमारी पूरी परंपरा, गौड़ीय परंपरा, सारे षट गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने अपने जीवन में इतना जोखिम लिया? श्रील हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, जीसस क्राइस्ट, प्रहलाद महाराज, कितने कष्ट लिए, क्यों? तो दिखने में तो सरल दिखता ही है लेकिन इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। दिखता तो सरल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि जब जीवात्माएं परम भगवान की सेवा से विमुख हो जाती हैं, इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता। बद जीवात्माएं अपनी इंद्रियों को तृप्त करके पूर्णतः लीन हो जाती हैं। जब भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है जीव, भगवान की सेवा छूट जाती है, तो फिर क्या होता है? वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाता। उसके लिए फिर उसको कितना भी धन खर्च करना पड़े, चाहे वो कैसे भी करे, वो धन खर्च करके इंद्रिय तृप्ति करना ही चाहता है। उसका चित्त जो है भौतिक नाम, भौतिक संगीत, आध्यात्मिक कीर्तन नहीं, भौतिक संगीत, भौतिक रूप और भौतिक गुण और भौतिक गतिविधियों तक ही सीमित रहता। मटेरियलिस्टिक आदमी, उसको क्या चाहिए? यही सब कुछ चाहिए। चूंकि जीवात्माओं को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के विषयों को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, मालूम ही नहीं, पहले तो भगवान का संबंध ज्ञान भी नहीं है, अभिधेय और प्रयोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, संबंध का भी नहीं पता, भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है यह भी नहीं मालूम। जो भूतात्मनि ईश्वरे है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद जाकर के पता लगता है कि वासुदेवम सर्वमिति, और ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। तो इस प्रकार से इसीलिए प्रचार की आवश्यकता है। परंतु ये जब भगवान तथा उनके पार्षद द्वितीय इस धरा पर प्रकट होते हैं और ऐसे बद जीवों को आध्यात्मिक विषयों का श्रवण और कीर्तन कराते हैं, पकड़ के बिठा देते हैं, बुलाते हैं कि आओ सुनो भगवान की कथा, नाम रूप गुण लीला, कहाँ फंसे हुए हो, किस संसार में फंसे हुए हो, क्यों अपना समय बिता रहे हो, तो जब ऐसे जो महापुरुष हैं, माँ भागवत है, उनकी अमृतवाणी जब बद जीवों के कानों में घुसती है, बद जीवों के जब कर्णों में ऐसी वाणी घुसती है, तो वह प्यासे चातक पक्षी की तरह है। जैसे एक चातक पक्षी होता है, प्यासा होता है, जो केवल वर्षा की जो बूंद जमीन पे गिरी नहीं है उसी की आस देखता रहता है कि कब वर्षा होगी और मैं प्यास बुझाऊंगा, तो उसी के समान भगवान की कीर्ति का गुणगान करता। तो इसीलिए ये प्रचार का जो हमारा कार्य है ये बहुत ही बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। तीन प्रकार के सुख होते हैं जीवन में, तीन गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सुख भी जो है तीन प्रकार के होते हैं, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कौन कौन से सुख होते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, सुखम त्विदानीम त्रिविधम शुनु मे भरत ऋषभा अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। भगवान कह रहे हैं जिनके द्वारा बज्जी भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत होता है, कभी कभी तीन प्रकार के सुखों का भोग करता है, कौन कौन से? नंबर एक 18.37 यद्तद्ग्रे विषमीव परिणामे मृतोत्पमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो प्रारंभ में विष जैसा क्या लगता है? जैसे सुबह मंगला आरती के लिए उठना, जगना कैसा लगता है? विष के समान लगता है। लेकिन अंत में जब मंदिर पहुंच जाते हैं तो अमृत के समान लगता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सात्विक सुख। लेकिन विष के समान होने के कारण व्यक्ति जो है उससे दूर भागता है, लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त उठ उठ जल्दी उठ, समय हो गया, मंगला आरती चलना है। तो यह प्रचार का कार्य है, खुद भी मंगला आरती आना और दूसरे को भी जगा देना, उससे भी आपको उसका फल मिल जाएगा। लेकिन यह नहीं दूसरे को जगाओ और खुद सोए रहो, जा जा तेरा टाइम हो गया मंगला आरती जाने का और मैं सोया रहूंगा। खुद भी उठना है और दूसरे को भी उठाना है। तो ये सात्विक सुख। और आगे दूसरा सुख कौन सा होता है? दूसरा सुख है राजसी सुख। वो क्या होता है? विषेन्द्रिय संयोगात यत्तत अग्रे मृतोत्पम परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों से प्राप्त होता है, है ना, आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कान क्या सुनना चाहता है? शब्द। जीवा क्या चाहती है? रस। त्वचा स्पर्श। तो ये इंद्रियां विषयों से संसर्ग प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, बहुत मीठा लगता है। सिनेमा देखना बहुत मीठा लगता है, संगीत सुनना बहुत मीठा लगता है, किसी का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत में विष तुल्य हो जाता है और वह रजोगुणी कहलाता है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं और वह युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है लेकिन अंत में या कुछ समय के बाद वही विष तुल्य बन जाता है, तब वे विलग हो जाते हैं और उनमें तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। तो ये राजसी सुख बताया। अब तीसरा सुख जो है तामसी सुख। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तामसम उदारितम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, शुरू से लेकर के अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, सुख निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में सुखी रहता है, नींद में पड़े रहो, आलस्य में पड़े रहो, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह तमोगुणी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है वो वास्तव में दुख भोगता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के जो हैं सुख हैं, लेकिन हमें न तो सतोगुण में जाना, सतोगुण एक आधार होता है जिससे हम सतोगुण से भी हमको ऊपर उठना, न रजोगुण न तमोगुण की तो बात छोड़ दीजिए, न रजोगुण। तो यहां पर भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? नायम देहो देवजाम लो, नायम देहो देवजाम ने लोके कष्टान कामान अर्हते विन बुझाइए, शेयो दीयम दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्य तो अनंतम। के यहां पर ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों को के निर्देहम नायम नायम देहो देवजाम निर्लोके, के जिसको इस संसार के समस्त देहधारी जीव में, सारे समस्त देहधारी जीव जिनके अंदर, जिनके भूतात्मनि ईश्वरे जो सारे सारे भौतिक शरीरों में व्याप्त हैं, जो जीवात्मा उनमें जिनको मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर और सुकर भी कर लेते हैं। कष्टान कामान अर्हते विट भुजाम, ये तो क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, वही बात आ रही है कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। ततो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, भक्ति मनुष्य को चाहिए भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए, इंद्रिय संयम करे, इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर करे, तभी वो तपस्या होगी और आगे बढ़ेगा। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता, शुद्धे तस्माद भ्रम सौख्यम तो अनंतम। और हृदय सुख शुद्ध होने से क्या होगा? हृदय सुख शुद्ध होने से वह जब वह इस पद पर प्राप्त हो लेता है तब उसे शाश्वत सुख का आनंद प्राप्त होता। तो शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है जब जीव जो है प्राप्त कर लेता है किसको? तपस्या के द्वारा भगवान की, जब भक्ति में दिव्य पद को प्राप्त करता है तो उसको शाश्वत सुख प्राप्त होता है। तो अब जो भक्ति है वो जो न्योफाइड है, जो नौसिखियां हैं, और जो जिसको कहते हैं कि जो मध्यम अधिकारी हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, जो पूर्ण रूप से तीनों गुणों से दूर हो चुके हैं, सबके लिए सबके लिए सबके लिए भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। तो इस बात को बताने के लिए सूद गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों को एक श्लोक बताते हैं, और वो श्लोक के ऊपर जो है अनेक चर्चाएं हुई हैं। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस श्लोक की बड़ी विस्तार से चर्चा की है, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भी श्लोक के ऊपर चर्चा हुई है। ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्या है ये श्लोक? जिससे हमको पता लगता है कि भक्ति सबके लिए कितनी आवश्यक है। आत्मरामस्य मुनयो, आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मरामस्य मुनयो, तो ऐसे आत्माराम जो अपने आप में ही मनन करने वाले हैं, अपने आप में ही संतुष्ट हैं, ऐसे आत्माराम जो मुनि हैं, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं, और निर्ग्रंथा सारे बंधनों से मुक्त हैं। अपि गुरु क्रमे, जो ऐसे भगवान की शरण वो भी लेते हैं, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, तो उनको भी अहेतुकी भक्ति करते हैं। ऐसा अद्भुत है भगवान के गुण, ऐसे भगवान हरि के गुण ऐसे अद्भुत हैं कि जो सारे बंधनों से मुक्त हैं, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, वो भी भगवान की भक्ति करने के लिए लालायित रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके लिए फिर एक दफा हम आपको भगवद गीता में ले चलते हैं, ठीक है। तो 12वां अध्याय क्या कहलाता है भगवद गीता का? भक्ति योग। और भक्ति योग में भगवान बताते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, कौन प्रिय है। तो ये 7 श्लोक हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं, हम साथ में पाठ करेंगे 13 से लेके 20 तक, है ना। 20 श्लोकों का ये अध्याय है, लेकिन इसी बहाने हम लोग जो है इसका पाठ करेंगे आपके साथ, कि किस प्रकार से भगवान को कौन कौन प्रिय है, और फिर अंत में भगवान निष्कर्ष बताएंगे कि इससे भी अधिक प्रिय मेरे को कौन है। पहले तो कौन कौन प्रिय है वो देख लेते हैं, क्यों भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो भगवान को प्रिय है उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं उन भक्तों के गुण जो मेरे को प्रसन्न कर सकते हैं, और सबसे पहली बात वही आ रही है जो इस श्लोक में है कि क्या आत्म उपम्येन, जो सबको अपने समान समझता है, मतलब किसी से द्वेष नहीं करता। सबसे पहली कंडीशन रखी है ना प्रहलाद महाराज ने, यही यहां पर कह रहे हैं भगवान। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुणा एवच निर्ममो निरंकारः सम दुखा सुखा शमी संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् यो मद भक्ता समे प्रिया। जो किसी से द्वेष नहीं करता, एक, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है। जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मद भक्ता समय प्रिया, यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते चय हर्ष अमर्ष भयो दोगेर मुक्तो यसा चमे प्रिया। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं किया जाता, यानी कोई कष्ट पहुंचाए तो भी वो विचलित नहीं होता। दोनों बातें हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और कोई अगर कष्ट पहुंचाता है तो उससे विचलित नहीं होना। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सच में प्रिया, भगवान कह रहे हैं, आगे चलते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, बहुत प्रसन्नता से फूलता नहीं है, फूल के कुप्पा नहीं हो जाता, और न शोक करता है, दुखी भी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं और सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं। जो न पछताता है, नो लेमेंटेशन, और न इच्छा करता है, कोई डिजायर नहीं, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति मान्य समय प्रिया, ऐसा भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। आगे चलते हैं। समा शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेशु समा संग विरजिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौने संतुष्टो ये किंचिता अनिकेता स्थिर मते भक्ति मान में प्रियो नरा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अब अंतिम श्लोक इसी अध्याय का, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते ती में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना ही चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न होते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इसी से आगे अब हम चलते हैं। इससे आगे भगवान ने क्या कह दिया, इससे आगे भगवान हमको 18वें अध्याय में ले जा रहे हैं और यहाँ 69वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। न च तस्मान मनुष्येषु, अब भगवान कह रहे हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात अन्य प्रियतरो भुवि, के इस संसार में जितने भी भक्त हैं, जो भी मेरे को प्रिय हैं, उन सब में मेरे को सबसे प्रियतम कौन है, जो मेरे प्रचार कार्य में लगा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। अब भगवान एक भविष्यवाणी कह रहे हैं कि इससे अधिक प्रिय न तो कभी कोई मेरे को हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।